मन से ना हारो जीने वाले। जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मतवाले। हर हम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल। तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान रे मतवाले। दुख है जीवन के दो पैराए। धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए।
दुख दुख है जीवन के दो पैराए। धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए।
जो सूरज अंधियारे में खो जाए वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा चल दुनिया के सुख दुख को बिसरा चल।
ओम शांति।
एक घने जंगल में एक गर्भवती हिरनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल उचित स्थान ढूंढ रही थी। और वो एक नदी के सामने आ जाती है। नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो घना जंगल अब उसमें आग लग गई है। और थोड़ी देर वहां रुकी ही थी तो देखा दाएं तरफ से एक खूंखार शेर आ गया। और थोड़ी देर में देखा कि बाएं तरफ एक शिकारी बाण लेकर खड़ा है। आगे नदी है, पीछे जंगल में आग लगी है। एक तरफ शेर है और एक तरफ शिकारी। ऐसी विपदा की घड़ी आई। उस हिरनी ने आसमान की तरफ देखा, बादल छाए थे। आर्त पुकार निकली, हे प्रभु रक्षा कर। हे प्रभु दया कर, इस विपदा से, इस आफत से, इस मुसीबत से मुझे छुड़ा। और अचानक आसमान में बिजली कौंध जाती है और शिकारी का ध्यान पट जाता है। और शिकारी बाण चलाता है। बाण सीधा शेर को जाके लगता है और शिकारी डर जाता है क्योंकि शेर घायल हुआ। शेर पीछे मुड़ जाता है, शिकारी भाग जाता है और तुरंत बारिश होने लगती है और बारिश से जंगल की आग बुझ जाती है और वो हिरनी अपने बच्चे को जन्म देती है। चारों तरफ से विपदा, कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं, और अचानक ऊपर से मदद आ गई और मदद भी ऐसी आई कि सारे संकट एक साथ समाप्त हो गए। जब हृदय से आर्त पुकार निकलती है तब अपने आप मदद आती है। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली थी, बाबा ने उसमें एक मंत्र दिया था। कौन सा? बाबा मेरे, बाबा मेरे साथी आ जाओ और क्या करो, मदद करो। जब चारों तरफ से संकट हो, चारों तरफ विपदा हो, तब एक भगवान ही आधार, एक उसकी शरण मात्र संबल है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं आएगी, ऐसी बहुत सी बातें होगी, ऐसी बहुत सी कठिनाई, मुश्किलें, पेपर, इम्तहान, आजमाइशें आएगी। और यदि उस समय बाबा को याद किया जाए और दिल की गहराई से याद किया जाए तो सभी ब्राह्मणों का अनुभव है कि अचानक मदद आ जाती है, अचानक अदृश्य हाथ आ जाता है और हमारी मदद कर कर चला जाता है। भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। दूसरा महायुद्ध हो रहा था और एक सैनिक थोड़ा घायल हो गया, उसके सारे साथी मर गए और उसके पीछे शत्रु की सारी सेना, वो अकेला, बाकी सबके पास बंदूकें और वो भाग रहा है पीछे से दुश्मन और वो सारे सैनिक। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और ये जो सैनिक है वो भगत है, भगवान को मानने वाला है, अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भाग रहा है, भाग रहा है, भागते भागते एक खंडहर सा घर उसको दिखाई देता है, उस घर में प्रवेश कर जाता है। उस घर में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, खाली है, कोई नहीं रहता वहां। एक कमरे के अंदर घुस जाता है और घुटनों के बल गिर के भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि सच्चे दिल से मैंने तेरी भक्ति की हो, तुझे याद किया हो तो मेरी रक्षा कर। और जब वो ये प्रार्थना कर ही रहा था तो एक मकड़ी आ जाती है उस दरवाजे के पास और अपना जाल बुनने लगती है। मकड़ी की तरफ उसका ध्यान जाता है और उसे मन ही मन हंसी भी आती है कि हे प्रभु, मैंने तुझे मदद मांगी थी, तूने एक मकड़ी को भेज दिया, ये मेरी क्या मदद करेगी। और थोड़ी ही देर में वो सारे सैनिक दुश्मन के उस खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं। पकड़ो, देखो कहाँ है, शूट, उनके जूतों की आवाज, टप 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 टप, इधर जा रहे, कोई उधर घुस रहा है, कोई इस कोने में, यहीं पर होगा, मारो, छोड़ो नहीं। अलग अलग आवाजें आ रही है और वो एक कमरे में अंदर है। दो सैनिक उस कमरे के बाहर आते हैं और देखते हैं वहां तो मकड़ी का एक जाल है, अर्थात लंबे समय से अंदर कोई नहीं गया है। और वो दोनों लौट जाते हैं और थोड़ी देर में सारे ही सैनिक लौट जाते हैं। और जब ये सिपाही देखता है कि अब कोई आवाज नहीं, फिर से घुटनों के बल गिरता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे प्रभु, Thy ways are past our understanding. तू जो है, तू जैसा है, तू जिस रीति से कार्य करता है, वो हमारी बुद्धि से परे है। हम समझ ही नहीं सकते तू किस तरह कार्य करता है। तू जो करता है, तेरी योजना, the divine planning, बहुत कल्याणकारी है, परंतु आँख को देख नहीं सकती, इसीलिए संशय करती है। पर यदि हम अपने जीवन को देखें, तो आज तक जीवन में जो जो मुसीबतें आई, उसमें से हम किस तरह से पार निकले, अगर सूक्ष्मता से, गहराई से हम चिंतन करें, तो पता चलेगा उसमें हमारा किया हुआ बहुत कम था। जो कुछ हुआ वो अपने आप हुआ। हम तो बहुत कोशिशें कर रहे थे, उन कोशिशों से कुछ नहीं हुआ, कुछ और हुआ जिसने मदद कर दी। और वो जो और था, वो जो कुछ और था, वो उसका हाथ था। और सेवाओं में भी सभी ने अनुभव किया होगा कैसे बाबा मदद करता है। यूरोप में एक मूर्ति मिली, घमासान युद्ध हुआ, दुश्मनों ने सारे मंदिर गिरजाघर तोड़ दिए, एक जीसस क्राइस्ट का पुतला था वो भी तोड़ दिया। और युद्ध के बाद जब भक्त लोगों ने देखा, वो जो पुतला था बहुत ही बुरी तरह से टूट गया था, बाकी तो चीजें थोड़ी बहुत जोड़ दी, पर दो हाथ तो थे ही नहीं और मिले भी नहीं, कहाँ चले गए उस पुतले के, जो कि ईसा मसीह का पुतला था। तो लोगों ने कहा कि नए हाथ बना दिए जाए और पुतले को फिर से पुनस्थापना की जाए, पर किसी का कहना था नहीं, जो प्राचीन पुतला है, ओरिजिनल स्टैच्यू है, हम वैसा ही रखेंगे, हम नहीं चाहते कि इसमें नए हाथ जोड़े जाए, कृत्रिम जोड़ कर लगा दिए गए। तो क्या किया जाए, वो पुतला आज भी है वहां पर, वैसा ही खड़ा है बिना हाथों के। और नीचे किसी एक विचारक ने एक विचार दिया कि ये लिख दो, और वो जो लिख दिया नीचे, वो एक ऐसा लिख दिया कि वो यादगार बन गया। क्या लिखा होगा नीचे? यू आर माई हैंड्स, तुम मेरे हाथ हो। क्या लिख दिया? कि मेरे हाथ तुम हो, मेरे अपने हाथ नहीं है, तुम्हारे हाथों से मैं कार्य करता हूं। तुम बाप की भुजाएं हो, तो हम उसकी भुजाएं हैं। वो हमारे द्वारा कार्य करता है और हम अगर निमित्त है, तो ये कार्य हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये मेरा नहीं है, उसका है। पग बिनु चलही सुनई बिनु काना, वो तो निराकार हमारे द्वारा कार्य करता है, और हम जहां निमित्त है वो जिम्मेवार वो है। तो चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए, जैसी भी समस्याएं आ जाए, यदि आत्मा समर्पण कर दे उस समय, जैसे उस हिरनी ने समर्पण कर दिया, क्या था उसके हाथ में, शून्य में चली गई वो, अब मेरा कुछ भी नहीं है, बचने का कोई मार्ग नहीं, कैसे बचूं? आगे नदी, पीछे नाग, एक तरफ शिकारी, एक तरफ शेर। कितनी भी कोई बुद्धि लगाए बच सकता है इस परिस्थिति से? एक ही मार्ग है, सारे विचारों को शून्य कर दो और समर्पण कर दो, तो आफत में राहत स्वतः ही मिल जाएगी। इस ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सी परिस्थिति आएगी, जिनको हम कहेंगे आफत, प्राकृतिक आपदाओं जैसी वो आफतें होगी। ऐसी कुछ परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे जो हमें पार करनी होगी। सबसे पहली है अंधकार। कौन सा अंधकार? ऐसी सात परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे। पहला है अंधकार, अहंकार का अंधकार से उत्पन्न परिस्थितियां। हमारी बहुत सी परिस्थितियां के जनक हम स्वयं हैं, और वो परिस्थितियां हमारे मैं से उत्पन्न हुई है। मैं राइट हूं, मैंने जो कहा बस वही होना चाहिए, मैंने जो सोचा वही होना चाहिए, मैं जो सोचती हूं जो करती हूं वही राइट है। ये अहंकार अंधकार को पैदा करता है, इसलिए अपने अहंकार को थोड़ा कम करना है। संसार में दो व्यक्तियों के बीच जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों में जो दूरी है, जो रुकावटें हैं, जो कड़वाहट है, उसका कारण है कि दोनों भी झुकना नहीं चाहते। परंतु यदि रिश्तों को बचाना है तो एक को झुकना पड़ेगा, और जो अहंकार से खड़ा रहता है धीरे धीरे वहां अंधकार छा जाता है। और अंधकार से क्या खतरा है? अंधकार से नुकसान क्या होता है? डर लगता है। और अंधकार में क्या होता है? क्या होता है? ठोकर लगती है। दूसरा, तीसरा, अंधकार में क्या होता है? क्या होता है अंधकार में? अंधकार में क्या होता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। और अंधकार में क्या होता है? चोट लग जाती है। गड्ढा हो तो दिखाई नहीं देता, गड्ढे में गिर सकते हैं। और अंधकार में क्या होता है? अंधकार में क्या होता है? सबने देखा है अंधकार। हम कितना भी ध्यान से चले पर दूसरा हमसे टकरा सकता है। हम पत्थर से टकरा सकते हैं, पिसल सकते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं। डराता है अंधकार। और क्या होता है अंधकार में? जंगली जानवर, आवाजें आती है अजीबोगरीब। किसी जंगल से हमें कोई कहे कि दिन में गुजरो, आराम से गुजर सकते हैं, और कहे रात को 12 बजे जाओ तो बाबा पहाड़ी गए हैं सभी? मधुबन में बाबा पहाड़ी में गए तो होंगे ना? गए कि नहीं गए? नहीं गए। सारे ग्रुप्स तो जाते हैं। दिन में कहो जाओ तो आराम से जाएंगे, योग करके आएंगे। आधी रात को कहो जाओ 12 बजे तो भालू। डराता है अंधकार, और अंधकार में भटक जाता है। क्या करता है अंधकार? भटका देता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, कहीं के कहीं चले जाते। अहंकार का अंधकार भी भटकाता है, ठोकर लगती है, गड्ढे में गिरते हैं, पैर फिसल सकता है, कोई हमसे टकराता है, समझ नहीं आता कहाँ जाना है, और जंगली जानवर मिल जाते हैं। गुहासी की बात सुनाते हैं ना, इधर से ब्रह्मा कुमारी और इधर से भालू आ गया, तो भालू को देखते ही बहन जी ने आंख बंद कर ली। भालू ने कहा क्या कर रही हो? उसने कहा बाबा को याद कर रही हूं। उसने आंख खोली तो देखा भालू भी आंख बंद करके खड़ा है। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है भोग लगा रहा हूं। यदि जीवन में अंधकार छा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरा अहंकार इसका कारण है। अंग्रेजी में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो वास्तव में हारता है। उसकी जीत नहीं होती, वो वास्तव में हार जाता है। जिसने ये सिद्ध कर दिया कि तुम गलत हो मैं राइट हूं, जीत उसकी नहीं हुई, वो वास्तव में हारा है। गणित अध्यात्म का दूसरा है। तो जब जब अहंकार का अंधकार छा जाए, सबसे पहले तो समर्पण करना है बाबा के सामने, स्वीकार करना है कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है मेरे ही अहंकार से उत्पन्न हुई है, और इसका इलाज है कि मैं झुक जाऊं, हार मान लूं, गलती स्वीकार कर लूं, तुम जीते मैं हारा, इस हार में ही जीत है, इस हार से ही भगवान के गले का हार बनेंगे। जीतने दो दूसरों को। कर्ण का युद्ध निर्णायक युद्ध है अर्जुन के साथ। दूसरे दिन उसके गुरु उसके स्वप्न में आके कहते हैं, परशुराम उसके स्वप्न में आके कहते हैं, कर्ण तुम जीत अर्जुन को दे दो, क्योंकि तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। दे दो। जीत दे दो उसको, जीतने दो, वो संबंध बच जाएगा, नहीं तो संबंध नष्ट हो जाएगा। कितने संबंध नष्ट हुए अहंकार की वजह से, जहां दोनों भी झुकने को राजी नहीं, दो पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दो व्यक्ति, दो मित्र, दो बहनें, दो भाई, युगल कोई भी हो सकता है, भाई बहन, दो पक्ष, दो पार्टियां, दो संस्कार, दो शब्द, दो हृदय, सबसे बड़ी आफत तो यही है। और राहत का कार्य यदि करना है तो स्वयं को झुका दो। दूसरी बात है, जो आपदा के समान है, पहला बताया अंधकार, दूसरी है बिजली। कौन सी बिजली? बैड न्यूज। बैड न्यूज, अभी अभी ठीक है और अभी अभी फोन आ गया, एक्सीडेंट हो गया, हिल गए, अभी अभी फोन आ गया, हमारा अपना स्वजन अचानक से बीमार पड़ गया है, सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बैड न्यूज, अभी अभी न्यूज आ गई, कि बिजनेस पार्टनर धोखा दे के भाग गया। अभी भी न्यूज आ गई, जितने पैसे थे सब क्लास गए। बैड न्यूज। एक माता थी मुंबई की, उसके साथ उसने कुमार को रखा जो ज्ञान में चलता था, अच्छा था, पर इतना विश्वास कर लिया उस पर, इतना विश्वास कर लिया। माता करोड़पति थी, उसका अपना कोई नहीं था, और उस कुमार ने कहा मुझे विदेश जाना है नौकरी के लिए। उस कुमार के पीछे उसने लगभग 18 लाख रुपए लगाए, और कुमार जो गया तो हमेशा के लिए चला गया, वापस ही नहीं आया आज तक। अब माता जी को बस 18 लाख रुपए ही दिखते रहते हैं योग में, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। अचानक आने वाली परिस्थितियां, बैड न्यूज हिला देती है आत्मा। क्या हम हर प्रकार की बैड न्यूज के लिए तैयार हैं? बिजली जैसी गिरती है, बिजली कड़कती है, समझ नहीं आता है क्या करना है। इसलिए बाबा ने कहा एवर रेडी रहो, अभी इसी वक्त यहां भगवान आ जाए और कहे चलो मेरे साथ। कौन कौन तैयार है? चलो हाथ खड़ा करना, इतने, और घर फोन नहीं करना है, बताना नहीं है चाबियां कहां रखी है। एटीएम नंबर वगैरह किसी को कुछ बताना नहीं है। इतने नष्ट हुआ, अरे वाह, भगवान तो खुश हो जाएगा। ये है मेरे स्टूडेंट, स्वयं को तैयार रखना है हर परिस्थिति के लिए। बाबा के महावाक्य, इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित नष्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध निकल पड़े घर से, पत्नी को देखा, बच्चे को देखा, आधी रात को, वो सारथी था चन्ना, नदी के निकट आए, अपने बाल काटे। चन्ना कहने लगा एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, सिद्धार्थ से कहने लगा एक बार पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, राज प्रसाद, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा सम्राट होने का भाग्य, सब कुछ छोड़कर जा रहे हो, कुछ तो सोचो। महात्मा बुद्ध पीछे देखते और कहते हैं मुझे केवल आग की लपटें नजर आ रही है, बस और कुछ भी नहीं, सब भस्म हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ जल के खाक हो रहा है। रोज ये अभ्यास करना है। कौन सा? अपनी ही मृत्यु का दर्शन करना। अंग्रेजी में एक कहानी, एक कविता है जिसमें ऐसा लिखा है कि विदेश में जब भी चर्च की घंटी बजती थी, अचानक समझ लेना किसी की मृत्यु हुई है। कवि लिखता है जब भी चर्च की घंटी बजे तो इट टॉल्स फॉर धी, ये तुम्हारे मृत्यु की घंटी है, ये सोचना कि मैं मरा हूं। कौन मरा? तुम खुद, ये सोचना। अपनी ही मृत्यु का नजारा देखना। आत्मा निकल गई, मृत शरीर पड़ा हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातें भी सुनना। मेरे अपने क्या सोच रहे हैं? जल रहा शरीर, किसी किसी को पता भी नहीं, मधुबन में पता भी नहीं चलता, पता किचन में चलता है, जब हलवा बनता है तो पूछते आज कौन गया, तब पता चलता है अच्छा वो गया। तो देखना है ये जो मेरा शरीर है जिससे इतनी आसक्ति है, यही नहीं रहेगा एक दिन, जल रहा है चिता में, और लोग क्या खुसुर खुसुर कर रहे हैं वो भी सुनना, क्या कह रहे होंगे लोग, क्या कहते हो? कोई कहता होगा बहुत अच्छा हुआ, रास्ता साफ हुआ, गया रास्ते का काटा निकला एक बार फिर, सीट लेके बैठा था अब कुर्सी खाली हुई, अब रास्ता बहुत अच्छा। कोई कहते हैं अच्छा हुआ धरती का बोझ कम हो गया थोड़ा। सुनता लोगों की बातें, वो जो हमें कहते थे हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे हैं, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है, कहता है मैं सबसे मुझे वैराग है, परंतु मेरी जो पत्नी है उसका मुझसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, मैं क्या बताऊं, शुद्धतम प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा है वो, जरा सा स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा प्रेम, दिव्य प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। गुरु कैसा, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहता है मुझे तो आपके पास आना तो है, परंतु ये पत्नी की वजह से रुका हुआ हूं। गुरु कहते हैं ठीक है, एक काम करो, तुझे एक जड़ी बूटी देता हूं, ये जाके खा लेना, और एक विचित्र सा आसन लगाना और वो खा लेना, तुम बेहोश हो जाओगे, ऐसा लगेगा लोगों को मर गया। वो जाता है, आसन जमाता है उलट पुलट और खा लेता है, और सब लोगों को लगता है मर चुका है, रोने लगते हैं सब, पत्नी तो इतना रोती है, बात मत पूछो। घर का दरवाजा जो है वो थोड़ा छोटा है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, जब उसे बाहर लेके जाने लगते हैं तो वो निकलता ही नहीं है उसमें से, क्योंकि आसन ही उल्टा पुल्टा लगा के रखा है। तो लोग कहते हैं चंदन का ये जो दरवाजा है इसको काटो, पत्नी कहते हैं चंदन का दरवाजा मत मत, चंदन के दरवाजे को मत काटो, पहले इसके पैर काट दो ना फिर। वैसे भी तो मर चुका है। और जैसे ही वो सुनता है खड़ा हो जाता है और प्रस्थान जंगल की ओर। सब स्वार्थी है, कौन सा प्रेम और कैसा प्यार। तैयारी रखनी, सब कुछ नष्ट होते देखने की, ये जो घर बनाया भस्म हो जाए, ये जो शरीर जिसको ऐसा पकड़ के रखा है, इतना श्रृंगार करके रखा है। हमें याद है हॉस्पिटल में एक बार युगल आए और वो घूम रहे थे वहां, नक्की अनादरा, और वो जो उनकी पत्नी थी अभी अभी शादी हुई एक 15 दिन पहले, और वो गिर गई पत्थरों से आबू में कहीं, और तुरंत लेकर आया। जब आई मर चुकी थी, ब्रॉड डेड, और वो भाई इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, अस्पताल की जो सामने की सीढ़ियां है वहां बैठकर जार जार रो रहा है, इतना रो रहा, इतना रो रहा कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। इतना प्यार, अथाह प्यार, उसको देखकर लग रहा था वाह प्यार हो तो ऐसा। एक महीने के बाद ओपीडी में आ गया कार्ड लेकर, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना, अभी एक मास भी नहीं हुआ है। नष्ट होते हुए देखना तो फिर दुख नहीं होगा, नहीं तो बहुत दुख होगा। ये जो धन के अंबार लगाए हैं सब खत्म हो जाएंगे, सबको आग लगनी है, भंभोर को आग लगेगी, भगवान हो आज कुछ नहीं बचेगा। योग में ये भी प्रयोग करने हैं, सब कुछ चलता हुआ देखने के, लाशें बिछी है लाशों पर चल रहे, नहीं तो स्वजनों की मृत्यु और सजनों की बीमारी बड़े बड़े योगियों को नीचे गिरा देती है। जो दूसरों को जीवन भर सिखाते रहे आत्मा अजर अमर अविनाशी, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, उनका अपना कोई चला जाता है तो आत्मा वित्मा सब गई। दूसरे की कोई गया तो उसको कहते हैं ड्रामा, कितना आसान है। और अपना कोई गया तो फिर ड्रामा याद नहीं आता। तो ऐसी बिजली यहां गिरेगी बैड न्यूज की, अचानक कोई खबर, एक व्यक्ति रो रहा है, उसका इतना बड़ा घर को आग लग गई, लोग खड़े हुए, घर जल रहा है आलीशान, वो रो रहा है, रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। उसका बेटा भाग कर आता है, छोटा लड़का, कहता है पिताजी आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है रोग नहीं क्या, देखो घर को आग लग रही है। वो कहता है पिताजी ये घर तो मैंने कल रात को ही बेच दिया था। वो कहता है क्या भेज दिया था? घर अभी भी जल रहा है, रासू खत्म, घर जल रहा है, घर पहले भी जल रहा था, अब भी जल रहा है, पर अब आंसू नहीं है। बीच वाला बेटा आता है, पिताजी हमारा घर जल रहा है। पिताजी कहते हैं अरे घर जल रहा है पर तेरे छोटे भाई ने इसे बेच दिया था कल रात को ही। बीच वाला कहता है बेच तो दिया था पर पैसे अभी तक मिले नहीं है, खाली एग्रीमेंट हुई थी। क्या फिर से रोना चालू, आंसू आंसू बह रहे हैं, आंसू 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 आंसू। वो अब थोड़ी लेगा, बात हुई थी खाली, लेन देन कहां हुई? फिर से रोना चालू, घर अब भी जल रहा है। थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा आता है, पिताजी आप रो क्यों रहे हो? कहते हैं हमारा घर जल रहा है और जिसको बेचा था वो अब थोड़ी लेगा। बड़ा बेटा कहता है नहीं, वो अपने वचन का पक्का है, जिसको बेचा था उसने कहा है घर जल भी जाए तो भी मैं लूंगा। क्या आंसू, घर अब भी जल रहा है। क्यों हो रहा है सर? मेरा आंसू ला रहा है, घर का जलना आंसू नहीं ला रहा है, ये मेरा है ये आंसू लाता है। ममत्व आंसू लाता है, ये ममत्व मिट जाए तो आंसू भी बंद। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। अब्दुल कलाम 5 साल के बाद जब उनका टर्म पूरा हो गया प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट हाउस से जब निकले एक छोटी सी बैग लेके, वही बैग लेके अंदर गए थे 5 साल के बाद, जाते समय बस एक बैग थी, कुछ भी लेके नहीं गए। हम मधुबन कितनी बैग लेके जाते हैं? एक। और आते समय कितनी होती है? 4। ये भी खरीद लू, वो भी खरीद लू, बहू के लिए, ननद के लिए, पोते के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, आबू वाली चीज। सुना है वहां पर चप्पल अच्छी मिलती है, ये भी लू, वो भी लू, ये भी लू, वो भी खरीदू, सारी वस्तुएं भर के रखी है। जितनी आसक्ति उतना दुख, जितना ममत्व उतना दुख, जितना मेरा का भाव उतना दुख। ये सब यहां है, मेरा छूटता जाए, मेरा कुछ है ही नहीं, ये पति ये पत्नी ये बच्चे ये घर, मैं ट्रस्टी हूँ, संभालने के लिए दिया है। बस एक दिन सबको जाना है। एक ज्ञान में चलने वाली माता, उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, उसे कोई दुखी नहीं, घर के सारे लोग दुखी, उसको कह रहे तुम रो ना, वो कहते मैं क्यों रोऊं, वो आत्मा थी निकल चली गई। इतने लोग आए देख रहे माता क्या स्थिति है, जरा दुख नहीं। ऐसे बहुत कम है। ज्ञान दाताओं की कमी नहीं है संसार, पर जो स्वरूप है उनकी कमी है। इसलिए बिजलियां कड़केगी, बिजलियां गिरेगी, और अपने आप को पहले ही तैयार कर देना है, ताकि वो जब हो तो कोई आश्चर्य ना हो, कोई भी चीज का आश्चर्य नहीं, जैसे पहले से ही पता था। तीसरा खाई, तीसरा आफत आपदा खाई, खाई में गिर जाते हैं। कौन सी खाई? उदासी की खाई, नैराश्य, निराशा। हमें पता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस अलबिलापन शत्रु है, पर इनसे भी बड़ा शत्रु अगर कोई है वो है उदासी, डिप्रेशन, उदास रहते आत्मा। खून की जांच करो सब नॉर्मल, शरीर में कोई दोष नहीं है, पर मन अवसादग्रस्त है, मन में खुशी नहीं है, और कई बार ऐसी खाई में हम गिर जाते हैं, और उस खाई से स्वयं को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। आवश्यकता है पहला डायग्नोसिस, निदान करना है अपना, कि ये जो मुझे हो रहा है ये उदासी है, ये डिप्रेशन है, इसमें मुझे डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता है कुछ समय के लिए, साथ साथ काउंसिलिंग, क्योंकि कई बार उदासी से व्यक्ति स्वयं निकल नहीं पाता है, उसे मदद लेनी पड़ती है, और भारत में बहुत ज्यादा, विदेश में लोग डिप्रेशन के साथ आते हैं, सीधा कहते हैं आई एम इन डिप्रेशन, ये दवाई चालू है, और भारत में छिपाया जाता है, उसे कलंक जैसा समझा जाता है, सोचते हैं मेरे जीवन में वो घटना हुई उसकी वजह से ऐसा चल रहा है, और उस घटना को हुए कितने साल हो गए, अब तक उदासी गई नहीं। अच्छा होता कुछ इलाज ले लिया होता और निकल गए होते बाहर। वैसे तो खुद ही निकलना है ज्ञान के आधार से, पर उदास व्यक्ति ज्ञान को भी तो नहीं समझ पाता, ज्ञान का चिंतन कहाँ कर पाता है, वो तो अपने दुख में डूबा रहता है, बस छोटी मोटी जो जीवन में घटना हुई उसी को पकड़े हुए, 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, बस सबके सामने अपमान कर दिया था, तब से उदासी में चले गए, आज तक उदासी से बाहर नहीं निकल पाए, अपने आप से खुद ही संघर्ष कर रहे, ना किसी के साथ शेयर किया, ना किसी को वो बात बताई। हमारे ओपीडी में एक विदेश की बहन आई, उसने कहा मुझे 30 साल से डिप्रेशन है, इतनी सारी फाइलें, कितनी दवाइयां डिप्रेशन की अलग अलग बदल दी, इतना लंबा डिप्रेशन, और देखने में तो सब ठीक, बात अच्छे से करते हैं सब, पर उदासी है अंदर से, ऐसा भी नहीं कि सेवा नहीं कर रही है, सेवाएं भी कर रही है, पर अंदर से उदासी है, दवाइयां चालू है। उसका थोड़ा काउंसलिंग हुआ और पता चला 30 साल पहले जब वो ज्ञान में नहीं थी, उसे एक युवक से प्रेम था, प्यार हो गया था, बहुत ज्यादा प्यार, उसे शादी भी करना चाहती थी, पर उसकी जो छोटी बहन थी, कुछ कारण ऐसे बने कि छोटी बहन ने उसके साथ शादी कर ली, और वो अपनी छोटी बहन से भी बहुत प्यार करती थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसका अधिकार उसकी बहन ने छीन लिया। और उसी समय उसी दुख की वजह से फिर उसने कोर्स किया और वो ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आज 30 साल चल रहे, पर वो जो भाव कि मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी वस्तु को छीन लिया, इस भाव ने उसके अंदर उदासी भर दी। और वो उदासी इतनी गहरी कि ऊपर से अमृत वेला, मुरली क्लास, सारे दिन भर सेवाएं, पर डिप्रेशन बना हुआ है अंदर ही अंदर, वो गया ही नहीं। फिर बाद में दवाइयां चालू हुई, फिर दवाइयों का डोज बढ़ा, कितने डॉक्टरों के पास गई, माफ नहीं कर पाई। उसे कुछ ऐसे अभ्यास दिए गए कि रोज अमृत वेला अपनी ही बहन को देखो और उसे रोज माफ करो, उस भाई को भी, उसको भी माफ कर दो, जो हो गया वो हो गया। और जब उसने रोज ये अभ्यास किया, धीरे 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 उसका डिप्रेशन निकल गया, सारी दवाइयां बंद हुई। छोटा सा काम करना था उसको जो उसने तब नहीं किया, बदले का भाव रह गया अंदर, दब गया वो, ज्ञान योग ने दबा दिया उस भाव को, दमन हुआ, दमन, सप्रेशन, रिप्रेशन। तो जहां जहां दमन होगा कोई भी चीज का, वहां सुनामी आएगा एक दिन। इसके लिए उदासी वो खाई है और ये भी आएगी जीवन में, ढेर सारी परिस्थिति आएगी। गीत में सुना, जीवन से नहार हो जीने वाले, जब जब गिरो फिर से खड़े हो जाओ, खुद ही खुद को हिम्मत देनी है, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन। नहीं दे सकते तो मदद लो फिर, और मदद लेने के लिए कैसी हिचक, राय लेना अच्छी बात है। रामायण में दिखाया है, राम को पता है रावण को कैसे मारा जाए, फिर भी यहां वहां मार रहा है, सिर काट रहा है, फिर आ रहा है सिर। विभीषण से राय लेता है, क्या करूं? विभीषण कहता है नाभि में मारो, राय ली, सजेशन लेना, एडवाइस लेना, किसी से पूछना क्या किया जाए। किसी किसी को बहुत छोटा लगता है ये राय मांगना, हम और किसी से पूछे, हम नहीं पूछेंगे किसी से। भक्ति मार्ग में गुरु किसने किसने किया था, जरा हाथ खड़े करना। माताओं ने ज्यादा गुरु किए, भाइयों ने कम। भाई कहते हैं हम ही गुरु है सबके, हम सिखाएंगे सबको। राय पूछना, राय मांगना, सजेशन लेना कि मेरी ये परिस्थिति है, मैं क्या करूं। उसमें अहंकार नहीं। तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनां तत्वदर्शनम्। गीता में लिखा है जब गुरु के पास जाओ, नम्रता से जाओ। तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसकी सेवा करते हुए प्रश्न पूछो। कई बार तो हमें ऐसे फोन आते हैं धमकी वाले, आपके पास टाइम कितना है, मुझे आधा घंटा चाहिए, देना हो तो दो, नहीं तो नहीं जाओ। ये है प्रश्न पूछ रहे, ये नहीं देखते सामने वाला क्या कर रहा है उस समय। परिप्रश्ने न सेवय उपदेशन्ति ते ज्ञाने न, फिर वो उपदेश करेगा गुरु जिससे पूछ रहे हो। ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम, उस तत्व का राय लेनी, पूछना है। चौराहे पर खड़े, कहां जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, सेवा केंद्र या घर, नौकरी या इधर का जीवन, फुल टाइम जॉब कि पार्ट टाइम जॉब, मधुबन या घर, ढेर सारे प्रश्न पूछना है अनुभवी व्यक्ति उसे वो राय देंगे, और जरूरी नहीं उन्होंने जो कहा वो करना है, राय सबसे लेनी है, ऑप्शंस ढूंढने हैं, ये कर सकते ये कर सकते, बाकी करना वही जो अमृत वेला बाबा टच कराया सुबह सुबह। और जब भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कम से कम 3 अमृत वेला गुजर जाने चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं लेना, बहुत महत्वपूर्ण जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, 3 अमृत वेला, टाइमिंग सुबह 2 से 5 बजे कंटिन्यूअस 3 दिन, मॉर्निंग 2 बजे से 5 बजे तक बाबा के सामने, बहुत ही बड़ा डिसीजन है। सब कुछ कर लिया युगल को, सारे प्रयत्न कर लिए समझाने के, फिर भी नहीं मानता है, फिर भी पवित्रता की देर झगड़े हैं, क्या किया जाए? अलग हो जाना है कि साथ में चल जाए? बहुत बड़ा डिसीजन है, घर पे रहना है कि छोड़ देना है, बड़े डिसीजन है, तुरंत नहीं लेने हैं। कोई भी डिसीजन, जॉब इधर करना है उधर करना है, करियर प्रोफेशन इसको छोड़ दूं क्या चालू रखूं? मिनिमम 3 उदासी, उसके बाद में चौथा रेगिस्तान। अकेलेपन का रेगिस्तान, अकेला महसूस होता है, कोई भी नहीं मेरा, भगवान भी दूर दूर नजर आता है, तन्हा तन्हा लगता है, अकेलापन। और हर व्यक्ति अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करता है, सब कुछ होते हुए भी अंदर अकेलापन है, पत्नी बच्चे पति घर परिवार जॉब पोजीशन पैसा सब सब अच्छा है, पर अंदर से खालीपन, क्यों? अपनी डायरी में लिख के रखना है, आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत बुझा सकता है। इस संसार का कोई व्यक्ति वैभव वस्तु कभी नहीं बुझा सकता। जब तक आत्मा प्रभु प्रेम में डूब नहीं जाती, सराबोर नहीं हो जाती, उसका यह अकेलापन कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा खालीपन रहता है। सब कुछ करने के बाद भी सेवाएं बहुत कर रहे हैं, पर जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए हैं। मुंबई में सबसे पहली प्रदर्शनी जब लगी थी, अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया था 1 पेज का, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चों पर बाबा खुश है, बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है, अच्छा अच्छा ये किया और आगे बढ़ते रहो, सफलता बच्चों के गले का हार है, बाप दादा बहुत खुश है। और लास्ट में एक लाइन थी, सेवा बहुत अच्छी की पर बच्चे बाप को भूले हुए थे, फुल स्टॉप। क्या कहा बाबा ने? सेवा बहुत अच्छी की पर बच्चे बाप को भूले हुए थे, पूरा कर दिया सब। जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले, जिसके लिए जीवन दे दिया है वो बुद्धि में है ही नहीं, कुछ और ही बुद्धि में चल रहा है, इसीलिए खालीपन है। रेगिस्तान की तरह है, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है, नजर भी आता है भाग के जाते हैं, वहां जल है देखते हैं वहां जल है ही नहीं, मृग मरीचिका मिराज ओएसिस, पानी है दिखा पर था ही नहीं, फिर उदासी फिर निराश फिर अवसादग्रस्त। यदि जीवन में खाली बना रहा है तो मौन और एकांत की आवश्यकता है, स्व चेकिंग की आवश्यकता है, क्यों ये खालीपन है, कौन सी चीज अंदर जो है जो होनी चाहिए और नहीं है। हो सकता है अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो रहा। ऐसे कितने लोग यहाँ हैं, सामने देखेंगे, आजू बाजू नहीं देखेंगे। पिछले एक मास में जिन्होंने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, हाथ खड़ा करेंगे। बस पिछले 15 दिन में जिन्होंने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, थोड़े से ज्यादा। पिछले एक हफ्ते में जिन्होंने अमृत वेला नहीं मिस किया, आज सुबह ही जिनका अमृत वेला मिस हो गया है, वो मन में हाथ खड़ा करेंगे। अमृत वेला फाउंडेशन है इस जीवन का। कितने भी लेक्चर सुन लो और कितने भी क्लासेस सुन लो और करा लो, कितनी भट्टिया कर लो, कितनी बार भी मधुबन चले जाओ, कितनी सारे दिन भर सेवाएं कराओ करो, अमृत वेला में हाथ खाली, दिन भर खालीपन रहेगा, अकेलापन रहेगा। हिंदी में दो शब्द है, एक है एकांत, एक है अकेलापन। क्या अंतर है दोनों में? यही की है दोनों। एक शब्द है एकांत, एक है अकेलापन। क्या अलग अलग है? एकांत और अकेलेपन में क्या अंतर? मुझे एकांत अच्छा लगता है। एकांत आनंद की अवस्था है, अकेलापन उदासी की अवस्था है। एकांत में व्यक्ति चिंतन करता है, अकेलेपन में निगेटिव थिंकिंग करता है। जीवन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों किया, सब मेरे साथ खराब करते, मेरा तो दुर्भाग्य ही ऐसा है। उधर भी वैसा ही था, यहां आने के बाद भी वैसा ही है। हमेशा जीवन में खराब ही होता आया है, हमेशा। पति भी मिला तो ऐसा, बच्चे भी मिले तो ऐसे। ज्ञान में आए उसमें भी दुख, सबको टोली मिल रही है, हम गए तो सबसे छोटा आम हमको मिला, ये भी दुर्भाग्य। सबको बड़े बड़े आम मिले, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सब बच गए, हमारे ही फ्रैक्चर हो गए। पता नहीं क्या है जीवन को हमारे साथ। वो तो छोड़ो, सबको रसगुल्ले मिल रहे हैं, उनके रसगुल्ले मेरे रसगुल्ले से बड़े हैं, हमारा छोटा ही मिला हमको, उसमें भी दुख है, हर चीज में दुख है। दुर्भाग्य से भरा गया है जीवन जैसे। तो अकेलापन है, डायग्नोसिस करना है अकेलापन का, ट्रीटमेंट चालू करनी है, और ट्रीटमेंट है अमृत वेला शक्तिशाली। अमृत वेले पर एक किताब है, किस किसने पढ़ी यज्ञ की? जिसने पढ़ी है अभी फिर से पढ़ना चालू करेंगे दो दिन के बाद या कल से, और जिनके पास है ही नहीं, सबसे पहले वो किताब पढ़ो। अगले एक मास तक कुछ दूसरा पढ़ना ही नहीं, दिन रात अमृत वेले की किताब पढ़ो, क्योंकि अमृत वेला ही नहीं हो रहा है। उसमें लिखा है अमृत वेले का महत्व क्या, अमृत वेले की समस्या क्या, अमृत वेला क्या करना चाहिए, क्या क्या बातें अमृत वेला, किन किन प्रयोग करो, कैसे प्रयोग करो। पहले जानकारी बढ़ाओ, अवेयरनेस जब आएगी तो करना चालू करेंगे, तब तक है ही नहीं तो क्यों करेंगे। उसके बाद में अगला पांचवा भूकंप, अर्थक्वेक। कौन सा भूकंप? दिल टूट जाना। जैसे भूकंप में दरार पड़ती है, दिल में दरार पड़ जाती है, दिल टूट गया, किसी ने दिल तोड़ दिया, बहुत बड़ी परिस्थिति है। दिल जब टूट जाता है तो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां, मुरलियों में आता है ना, दुनिया वालों को दिल दो क्या करेंगे, वो टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। इंग्लिश में कहावत है, गिव योर हार्ट टू गॉड एंड यू विल नेवर हैव अ हार्ट अटैक। अपना दिल किसको दे दो? भगवान को दे दो तो कभी हृदयघात नहीं होगा। पहले तो अपने आप को वज्र के समान शक्तिशाली बनाना है, दिल को पावरफुल बनाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी। जिसकी भावनाएं कमजोर है, जरा कोई फूंक मार दे उड़ जाते। मुरलियों में आता है छुई मुई, हाथ लगा दिया गए। जिसने थोड़ा कुछ बोल दिया गए, दिल टूट जाता है। रात भर रंगोली निकालो, सुबह कोई आता है कहता है ये फालतू है एकदम, गए। आज के बाद कभी नहीं निकालेंगे प्रतिज्ञा, कितना भी बुलाओ अब नहीं निकालेंगे। बहुत भोजन बनाया, ब्रह्मा भोजन 6 घंटा। कोई आके कहता है ये किसने बनाया, एकदम टेस्टलेस, तुमको तो आता ही नहीं कुछ, बस सुन लिया और गए। अभी आज के बाद कभी हाथी किचन में ही नहीं एंट्री करेंगे, बहुत हो गया। उदास, जरा सी किसी ने ग्लानी कर दी, जरा सा अपमान कर दिया, जरा सा कुछ बोल दिया कि गए। माता जी आए मधुबन में, सेवा की 2 महीना, बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी। जाते समय किसी ने बोल दिया, क्यों माता जी, खाए पिए और चल दी, बस गई सारी खुशी खलास। बहुत ऐश कर लिया मधुबन में, अब जा रहे हो, पूरा दिल ही टूट गया, बाबा के कमरे में जाके जार जार रो रहे। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया गए। डायमंड हॉल में बैठे बाबा मिलन में, किसी ने कहा उठो ये हमारी जगह है, उठ गए। उठ के दूसरी चेयर पर जाकर बैठे, उधर से दूसरा है, अरे ये मेरा ही है रिजर्व, उठो उठो। फिर उठे, फिर नीचे जाके बैठ गए। उसने कहा तुम सेवाधारी है, सेवाधारियों के लिए पीछे जाओ वहां पर, बस खलास। प्रभु मिलन का आनंद गया। किसके चक्कर में? कुर्सी के चक्कर में। दुखी उदास, हम इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे हैं, लोग हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, बड़ा दुख हुआ सुनकर। ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही बोलना। तो सब कुछ सहन करने की ताकत हमारे अंदर हो, सब कुछ, निंदा स्तुति ग्लानी अपमान, ऐसे शक्तिशाली थोड़ी बनेंगे। जितने ज्यादा तीर चुभे होंगे उतना व्यक्ति अधिक शक्तिशाली। किसी ने एक चित्र भेजा था 2 हिरणों का, पहला हिरण एक तीर चुभा है, घायल होके गिर गया, बाजू में अब वही हिरण बूढ़ा हो गया, पूरे शरीर में तीर ही तीर चुभे है पर खड़ा है। This is known as spiritual maturity, आध्यात्मिक परिपक्वता। सारे आघात सहन करते हुए भी खड़े रह गए। और जो कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील, बस आंसू रोना आता है, वो कैसे मार्ग पर बढ़ पाएंगे? यहां तो सिक सिक झुक झुक मरमर। ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डर? ओखली में सिर दिया है ना, ये यज्ञ ओखली है, आए ना इसमें, अब खाओ दंडे। और मूसल कौन है? एक एक ब्राह्मण आत्मा मूसल है। कुक कोर्स के टाइम पे तो हमको ऐसे कुछ बताया नहीं था, तब तो कहा था कि सुख शांति का मार्ग है, और यहां आते ही पेपर चालू हो गए। और क्विक दरार कुछ भी हो जाए, मजबूत रहना है, अंदर से शक्तिशाली रहना। अगला बाढ़ फ्लड, कौन सी बाढ़? पुराने संस्कारों की बाढ़। ये भी एक आफत है, पुराना मिट चुका था, खत्म हो गया था, अचानक से पुराना संस्कार आ गया। हमने सोचा था पुराने संस्कार तो मिट गए, पर वो तो मिटे ही नहीं, अपने आप आ गए, भस्म हो गए थे ऐसा लगा, पर राख से फिनिक्स पक्षी होता है, फिर से जीवित हो जाता है, वैसे संस्कार जीवित हो जाते हैं। और ये भी बाढ़ आएगी, इसके लिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि मेरा ये जो संस्कार इतने समय से था रोने का, अब नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं रोती, अब मैं बहुत अच्छी हूं। उसी दिन रोना आएगा जिस दिन ये सोचेंगे, जब भी ये सोच लिया कि बस अब मैंने इसको जीत लिया, काम विकार तो अब बस मेरे तो इर्द गिर्द भी नहीं भटकता, मैं अखंड ब्रह्मचारी बहुत अच्छा। उसी दिन ऐसी माया आएगी कि खलास, जीत का भी अहंकार ना हो विकारों के। तो ये भी होगा, पुराने संस्कारों की बाढ़ आएगी, इसके लिए सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, चौकस चौकन्ना हर समय, निरंतर जागृत, तस्मात जागृत। और सातवां पहाड़ गोवर्धन पर्वत, मुश्किलों के पहाड़, कठिनाइयों के पहाड़ टूटेंगे। जो कठिनाई, जो मुश्किलें आज तक नहीं थी वो अचानक आई, जो परिस्थितियों जिनके बारे में सोचा भी नहीं था अचानक सामने आ गई, क्या करें। बच्चा जो अब तक ज्ञान में चलता था अचानक ज्ञान में चलना बंद कर दिया, कन्या जो अब तक ज्ञान में चल रही थी अब कहती है मुझे शादी करनी है, कॉलेज में बच्चे को भेजा, एडिक्शन हो गया है, ड्रग्स ले रहा है, अचानक पता चला बुरे संग में चला गया है, अब किसी की सुनने को तैयार नहीं, अचानक पता चला जिसके लिए इतना खर्च किया, इतनी एडमिशन ली, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाई, और अभी 6 महीने के अंदर बच्चा कहता है कि मुझे मेडिकल में पढ़ाई करनी नहीं। अचानक कोर्ट केस, अचानक ब्लेम, कुछ भी होगा। तो ऐसे पहाड़ टूटते हैं, डरने की बात नहीं, परंतु अपने आप को अंदर से सशक्त बनाना है। इसलिए कहा जिन्होंने अमृत वेले की किताब नहीं पढ़ी है अगले 1 मास तक वही किताब पढ़ते रहना है, तब तक जब तक अमृत वेला सहज नेचुरल ना हो जाए। एक दूसरा काम जो करना है वो है मुरली चिंतन, मुरली अध्ययन। पढ़ने से केवल कुछ नहीं होगा, ना ही केवल पढ़ के सुनाने से, तीसरा काम करना है वो है चिंतन, मुरली चिंतन। रोज की मुरली सुनते सुनते ही उसमें से टॉपिक्स निकाल लेने हैं 5, कोई भी टॉपिक, बस टॉपिक नोट करके रखो, और फिर सारे दिन भर सोचना इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, चिंतन करते रहना है। तो बुद्धि थोड़ी ऊपर रहेगी शरीर से, संसार के दुखों से, नहीं तो दुख डुबो देंगे, क्योंकि संसार का चिंतन करते करते दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति।
जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए।
बहती नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए।
दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, को जला कर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर। बढ़ता चल लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा।